पहला उम्मीद का दर्जा क्या था? कि इबादत में लज्जत आने लगती है उम्मीदों से। दूसरा दर्जा क्या होता है? उसमें इंसान इबादत तो कर ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत में लज्जत भी है, लेकिन अपनी पसंदीदा चीज़ें जिनमें बड़ी रग़बत थी इनको छोड़ देता है और उससे बेहतर चीज़ को इख्तियार करता है, नफ्स पे काबू पाता है। देखिए ये बड़ी एहतियात से सुनिएगा, इसमें लोगों ने बड़ी गलती खाई। वो कहते हैं हलाल भी छोड़ दो क्योंकि अल्लाह हमसे बड़ा खुश होगा। इसी से रहबानियत की इब्तदा भी हुई थी। सूरत हदीत में आता है कि अल्लाह कहते हैं ये बिदत नसारा ने इख्तियार की थी कि वो अपने आप को किस तरह दुनिया से दूर करते थे। लेकिन यहाँ फ़र्क रहबानियत में और इन जुमलों में क्या है कि ये वो लोग हैं जो अपनी पसंदीदा चीज़ों को और मरगूब चीज़ों को तर्क करके इसके बदले में इससे कहीं बेहतर और बरतर चीज़ को इख्तियार करने में मुजाहदे नफ्स का सबूत पेश करते हैं। इसके बाद अपने मकसूद तक रसाई के लिए हिम्मत से काम लेते हुए उम्मीद का सहारा लेते हैं। ये वो बुलंद तरीन मरतबा है जहाँ तक रसाई के लिए अहकाम दीनिया से वाकफियत की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि इस तरह की पसंदीदा चीज़ों और मरगूबात के हसूल का ताल्लुक उम्मीद और आस से होता है। इसके लिए अहकाम दीनिया और असूल शरिया से वाकफियत का होना ज़रूरी है। ये दो दफ़ा जुमला इसमें छोटे से पैराग्राफ में क्यों आया कि इस दर्जे पे पहुंचने के लिए शरीयत के रूल्स की ज़रूरत है। वजह क्या? क्योंकि लोग शरीयत को जाने बगैर वो काम करने लग जाते हैं अल्लाह को पाने में जो हराम होते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, सुनी सुनाई भी बातें हैं और बिल्कुल यानी ऐसे बंदों से जो खुद अपने इस एक्सपीरियंस को शो करते हैं। आप देखिए कि आप चाहते हैं कि आप अल्लाह का कुर्ब पाएं ना, तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी को पसंदीदा चीज़ छोड़ दूँ। क्या छोड़ेंगे आप? मसलन खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें। ए अल्लाह मैं इसलिए दूध नहीं पीती कि तू मुझसे राज़ी हो जा। तो लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून के बाद अगली आयत क्या? कुल्लु तामिन कान हिल्ल लि बनी इसराइल, सारे खाने बनी इसराइल पे हलाल थे। हाँ मगर इल्ला मा हर्रमा इसराइल वाला नफसी, हाँ जो हज़रत याकूब ने खुद हराम किया। क्या हराम किया था उन्होंने? ऊँटनी का दूध हराम कर दिया। क्यों किया? कि अपनी मनपसंद चीज़ छोड़ दूँ। ये तफसीर आपको बताई गई थी, एक और भी है लेकिन एक ये भी है। अब आप देखिए ये अमल ये उनका अपना था, ज़ाती अमल था, बनी इसराइल ने उसकी मुताबकत करना चाहिए, अल्लाह ने रोक दिया। नबी सल्लम के पास अबू हुरैरा के नाते से एक बात आई कि तीन लोग अभी आए थे और वो ये कह रहे थे, एक कह रहा था कि मैं खाऊंगा नहीं, एक कहता है सोऊंगा नहीं, एक कहता है शादी नहीं करूंगा ताकि मैं पूरा अल्लाह वाला बन जाऊं। तो अल्लाह के नबी ने कहा उनको बुला कर लाओ। फिर उनको कहा कि देखो मैं खाता भी हूँ तो रोज़ा भी रखता हूँ, सोता भी हूँ तो इबादत भी करता हूँ और मैंने शादियाँ भी की हैं। और उसी में आगे आपने क्या कहा कि मेरे इस दीन में रोज़ा क्या है? रोज़े की कैफियत रहबानियत आली है। और जिहाद जो है यानी भाग दौड़ करना दीन के रास्ते में, वो क्या चीज़ है? वो इस दीन की ज़िरवा है। अब आप कोई ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जो आपके लिए ज़रूरी थी। मसलन कोई कहता है मैं खाना छोड़ देता हूँ, आज से मैं रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि रोटी खाने में वक्त बहुत लगता है, पकाने में टाइम लगता है, खाते हैं तो नींद आती है, तो मैं ऐसा करती हूँ बस मैं फ्रूट्स पे गुजारा करूँगी। पहली बात है कि फ्रूट खाएं या रोटी खाएं दोनों अल्लाह की हैं, ठीक है। आप कोई पसंदीदा चीज़ छोड़ें, छोड़ें नो प्रॉब्लम, सिर्फ वो चीज़ छोड़ें जो आपके और अल्लाह के बीच में रुकावट बनती है। हलीम बनानी आपको बड़ी अच्छी लगती है, बहुत पकाते हैं लेकिन आप जिस तरह अपने दिल से पकाते हैं वो पूरा दिन ले लेती है, और वही दिन जिस दिन हलीम बनाने का इरादा था वही आपके किसी दीन की कमिटमेंट का काम था। फिर कहें अल्लाह को कि अल्लाह आज हलीम की बजाय सिर्फ दाल बना लेती हूँ इसलिए कि ये पूरा दिन मेरा इधर लग गया तो उधर जाऊंगी। जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगा, एक तरफ अल्लाह का हक पीछे दब रहा है दूसरी तरफ है, फिर कर ले। और अगर आपका छुट्टी का दिन था, कुछ भी नहीं करना अपनी फ़र्ज़ इबादात के सिवा और आप आराम से घर में हैं, मियाँ साहब भी घर में, आप उस दिन जितनी मर्जी हलीम बनाए, कोई गुनाह की बात नहीं। अल्लाह को हमारे खाने या ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ना खाने से नकाहत हो, सुस्ती हो, महरूमी हो, तो उससे बेहतर है कि इंसान खा ले, लेकिन इतना खा ले, इतना खा ले कि नंबर एक हर वक्त शहवत, फिर ख्वाहिश, फिर उसी से बीमारियां, तो वो तो किसी को भी नहीं पसंदीदा। लेकिन जहां बहरहाल ये उससे अगला दर्जा है कि ठीक है अपनी मनपसंद चीज़ छोड़ते हैं, लन तनालुल बिर्रा वाली बात है यहाँ बेसिकली। या कुरान पाक में हज़रत सुलेमान का भी एक किस्सा है कि जिसमें उन्होंने कुछ घोड़ों को देखने में लग गए मुआयने में तो उनकी नमाज चली गई। सूरह स्वात की आयात है वो, تو انہوں نے ان کو ذبح کر دیا. کوئی ایسی چیز جو آپ کی نماز، قرآن، کمٹمنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہو، اس کو چھوڑنا یہ ایک بڑا اعلیٰ درجہ ہے، عام حالات کی بات نہیں ہے. تیسرا درجہ دیکھیے جو اب سب سے اوپر ہے، یہ امید ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو واقعی ارباب قلوب ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا جو صاحب دل ہیں، ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی فکر دامنگیر رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے منتظر ہیں، شوق رکھتے ہیں، اس لیے دنیا ان کی نظروں میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتی، اور زاہدانہ زندگی گزارنا ان کی زندگی کا سٹائل بن جاتا ہے. سورت کہف 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھے تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ تیسرا درجہ ملاقات کا، جس میں بندہ ہر وقت اللہ سے ملنے کو تیار ہو، اور اس کو رجاء لقیہ کہتے ہیں، لقاء ہوتی ہے نا ملاقات، رجاء لام قاف یا اور الف، لقیہ یعنی جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس امید میں جیتا ہے، اور یہ احسن ترین عمل ہے. سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرے گا تو اللہ کا وقت تو آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم. آپ اس کو اپنی زبان میں یوں سمجھیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا راستہ دیکھتا ہے، یعنی یہ وہ امید ہے، نہ اب ان کو جنت کا ہے، نہ ان کے لیے عبادت ہے یا دوسری چیزیں، وہ گزر چکے ہیں مرحلے، وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں. اور انسان کی یہ کمزوری ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے دوسرے بھی محبت کریں مجھ سے، جو اس کی نظروں میں جچتا ہو نا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نظروں میں بھی جچوں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مخلوق سے نظریں اٹھا کر خالق پہ نظریں لگ جائیں، یہ ہے امید کی آخری قسم. لیکن یہ ہر ایک کو ملتی نہیں ہے، اور ایسے لوگ مضطرب رہتے ہیں، کر کے بھی کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوا. ان کے لیے ہر وقت ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، میں کیا کام کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں. یعنی یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا کہ دل میں اللہ 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 سے ملاقات کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں ہو، ہر وقت اسی کی امید میں ہو. ایسا انسان بچوں میں بھی ہوتا ہے، بیوی میں بھی ہوگا، کاروبار میں بھی ہوگا، لیکن دل اٹکا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھ کم ول تے دل دوست ول، یعنی لفظ تو کچھ اور ہے لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، ہاتھ کام کریں آپ کے لیکن دل محبوب کی طرف ہو. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، جیسے آپ دیکھیں نا سارا دن آپ لوگ بزی رہتے ہوں گے، یہاں رہتے ہیں بزی، کام اتنے کر کے جاتے ہیں، گھر جاتے ہوں گے، بچے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کی ٹیوشن ہے، ان کے جاب ہے، یہ جو بھی چلتا ہے آپ دیکھتے ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیں، یہ کام میں جلدی جلدی کیوں نپٹا رہی ہوں کہ جلدی سے ان کو فارغ کر کے تھوڑی دیر باہر بالکنی میں جا کے اللہ سے باتیں کر لوں. یہ کام اس لیے کر رہی ہوں جلدی سے تاکہ ہائے اثر کا وقت آنے والا ہے، میں نے جلدی جلدی نہیں، میں نے بڑے پیار والی نماز پڑھنی ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. اور یہ باتیں سچی بات ہے، خود بھگتے بغیر سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہر کام کر لیا اور نماز، کہتے ہیں 2 منٹ میں پڑھ کے آئی، جلدی سے پڑھ کے آئی، سارے کام آرام آرام سے پرفیکشن کے ساتھ، لو ذرا تم کھڑی ہو نا، میں ابھی گئی ابھی آئی، کیوں کہ میں نماز پڑھ کے آ گئی. نہیں، اللہ سے ملاقات بہت بڑی بات ہے، اور یہ کب تک رہتی ہے امید؟ جب تک بندہ دنیا سے نہ جائے. ایسا بندہ پھر واقعی چلتا پھرتا اس دنیا میں، لیکن اس کا دھیان وہاں ہوتا ہے. کسی جگہ جانا ہو نا، شادی سے پہلے دیکھ لیں، لڑکی کھوئی کھوئی رہتی ہے، تصور میں کبھی خوف، کبھی امید، کبھی اچھی کبھی بری، وہ سسرال میں پہنچ جاتی ہے. اور پہلے سے اگر محبت ہو تو محبوب کے پاس ہونے کا احساس بندے کو کتنا خوبصورت کر دیتا ہے، ایک خاص بندے کے اوپر رنگ آنے لگتا ہے. جب ہم اس دنیا میں رہیں اور ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق لگ جائے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جینے کا رنگ بڑا. آپ کہتے ہیں دکھی ہیں، دکھ کا تو وقت ہی نہیں، میں تو اس خوشی میں ہوں کہ میں اپنے رب کے پاس ہوں. اور ایسے لوگوں کو فکر پتہ کیا ہوتی ہے؟ موت کب آئے گی. اب یہاں سمجھیے گا، خودکشی کی کوشش نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے کہ میں مر جاؤں، لیکن وہ گھڑی دیکھ دیکھ کر اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں، بالکل سامان باندھ کے बैठा होता है ना, जैसे कोई पर्सन एयरपोर्ट पे जाने के लिए हर वक्त अपना हर मामला सीधा रखते हैं, अलमारी में कपड़े रखते हैं तो सोचते हैं पता नहीं निकालने किसने, कोई चीज़ कहीं रखते हैं अमानतन तो किसी चार लोगों को बता के रखते हैं कि पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। मुझे एक बुज़ुर्ग याद आती है, वो कहती थी जाना है वादा करके आए, बिल्कुल जाना है, डर नहीं लगता, नहीं जाना है, ठीक है चलेंगे, तैयारी, यानी ऐसा बंदा तैयारी करता है। और ऐसा बंदा फिर घर में बिस्तर पे सो नहीं जाता कि अब चलो मरना ही है तो अब सो जाएं, वो क्या चाहता है कि मुझे मौत कब आए, जब मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ, तो मौत तो किसी वक्त आ सकती है, तो क्यों ना मैं अल्लाह का काम शुरू करूँ ताकि मुझे उसी रास्ते में मौत आए। इसमें बहुत खूबसूरत मिसालें हैं। उमैर बिन हमाम का नाम आपने सुना होगा, बहुत पहले कई दफ़ा आपने ये किस्सा इनका सुना है। इनको अल्लाह ताला से मुलाकात का बहुत शौक था और नबी सल्लम ने इनको खुशखबरी भी दे दी थी कि तुम जन्नत में जाओगे। तो खजूरें खा रहे थे, एक खजूर खाई दूसरी खाई, ये गज़वे अहद का जिक्र है, जब मुसलमान अभी सेटल डाउन हो रहे थे ना, तो अल्लाह के नबी उनको सूरत आल इमरान की वो आयतें सुना रहे थे, सारी इला मगफिरत व जन्नत अर दुहा कर दिस समावाती वाला, कि उस जन्नत के लिए भागो जिसकी चौड़ाई या जिसकी कीमत जमीन और आसमान जितनी है। तो इन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं जन्नत में जाऊंगा, तो आपने कहा तुम जाओगे, आप ये खुशखबरी देकर आगे चले गए। खजूरें थी कुछ, एक खाई दूसरी खाई, फिर कहने गए मैं कितना महरूम हूँ, खजूरें खा रहा हूँ और अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, और मैदाने जंग में कूदे और शहीद हो गए तो पहुँच गए जन्नत में। यानी उनको खजूरें खाने का वक्त भी गवारा नहीं था। इसी तरह अनस बिन मालिक गज़वे बदर में थे, जब मुशरिकीन ने मक्का करीब आए तो अल्लाह के नबी ने रग़बत देते हुए कहा चलो उठ चलो और इस जन्नत की तरफ चल पड़ो। यहाँ देखिए बदर का जिक्र है, लेकिन ये तफसीर में भी आपको बताया गया था कि दोनों तरह से आती है, ज़्यादा जो सरकमस्टांसिस समझ आते हैं वो उहद के आते हैं। बहरहाल कोई भी हो, बात तो एक ही है कि आप रग़बत दिला रहे थे, तूलो और आसमानो ज़मीन के बराबर है। रावी कहते हैं कि ये बात सुनकर उमैर बिन हमाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या ऐसी जन्नत भी है जिसका तूलो और ज़मीन आसमान के बराबर है, तो आपने कहा हाँ ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा आफरीन सद आफरीन, यानी 100 दफ़ा फिर लब्बैक मैं तो करूँगा जाऊँगा। ये सुनकर आपने फरमाया तुमने किस बुनियाद पर आफरीन आफरीन के कलेमात कहे, तो उस पर उमैर बिन हमाम ने जवाब दिया नहीं कोई बात नहीं, बस मैंने तो इस उम्मीद में ये खुशखबरी के कलेमात कहे थे कि मैं भी इन नेक बख्तों में शामिल हो जाऊँ जिनको आपने खुशखबरी सुनाई है। तो आपने फरमाया जाओ तुम भी इन खुश नसीबों में से एक हो। चुनाचे सहाबी ने अपने तरकश या जंबील यानी थैले में रखी खजूरों में खजूरें निकाली, खाना शुरू की, फिर एकदम ये ख्याल आया, कहने लगे अगर ज़िंदगी ने वफा की तो ये खजूरें खाने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बाकी है। इसके बाद पास जो खजूरें थी उन्होंने पीछे छोड़ी और दुश्मनों की सफ़ों में गए और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश फरमा लिया। तो ऐसे लोगों को जब अल्लाह से मुलाकात का यकीन होने लगता है ना, तो फिर उनको बस एक ही तड़प होती है कि अब कब अल्लाह के पास जाना है। सूरह अनकबूत आयत 5 में मन कान यरजू लिका अल्लाही, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो फिर वक्त तो आने ही वाला है, कितना को दूर रह गया। और हमारे असलाफ का यही अमल था, लेकिन आज क्या हुआ, आखिरी हिस्सा पढ़ लें खुद ही। आज मुसलमान को मादे की दौड़ ने इतना मसरूफ कर दिया, वो तो रात जब बिस्तर पे पड़ता है उसको कहाँ वक्त रहे कि वो सोचे जन्नत का और अल्लाह के बारे में सोचे। इतनी धड़मार है हमारे जहनों पे इस वक्त काम की, मादे की, चीज़ों की। एक किसी ने प्रेजेंटेशन भेजा था, उसके अंदर यानी वीडियो है पूरी, थोड़ा सा म्यूजिक है इसलिए मुझे इतनी वो सुनाने में पसंद नहीं आई, लेकिन उसका थीम क्या था किसी वक्त आपके साथ शेयर करेंगे इधर, कि किस तरह दुनिया में करोड़ों ट्रिलियनर लोग जो थे खेल कूद के दुनिया से चले गए, क्या हाथ गया, कुछ भी नहीं। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह से उम्मीदें लगाएगा, इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हम अपने ऊपर भी लेकर सोचें कि हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत में हमारा दिल कितना को लगा रहता है। कोई बात इस हिस्से में जो आपके जहन में आई हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, अपना जैसा भी लें, मैं भी लेती हूँ आप भी लें। क्या मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ, क्या झूठी उम्मीदें हैं कि सच्ची उम्मीदें हैं, क्या नेकियां करके उम्मीद लगाती हूँ या गुनाहों से तौबा करके उम्मीद लगाई हुई है, या फिर गुनाहों में मसरूफ हूँ फिर भी पुर उम्मीद हूँ। तो पहला दूसरा तीसरा दर्जा हम खुद देख सकते हैं। अब आगे बस छोटे छोटे टॉपिक हैं चंद रह गए। उम्मीद और गुनाहों का बयान, यानी गुनाह के साथ उम्मीद का क्या ताल्लुक है। तो पहली बात है कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और उसका दायरा कार कितना वसी क्यों ना हो, दायरा कार वसी कैसे होता है? कुछ गुनाह होते हैं जो आप खुद करते हैं, दैट्स इट, वो आप तक रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों से ऐसे गुनाह भी होते हैं जिसका असर फिर दुनिया में फैल चुका होता है। कोई लोगों को ऐसी बेहयाई की चीज़ें दिखाता था, या कोई ऐसी चीज़ें आप खुद समझ जाएं, अब क्या करें? आपने तौबा कर ली, उन चीज़ों का क्या करें जिन्होंने नहीं की और जो आपकी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं? तो ऐसे तमाम मामले में अगर गुनाह पहाड़ की चोटियों से भी बुलंद हो जाएं, फिर भी अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। बल्कि अक्सर ये जुमला जब टॉपिक होता है ये, तो मैं बोलती हूँ कि दीन इस्लाम की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है कि जो शिर्क जैसे गुनाह को भी माफ़ करा देती है, वो तौबा है। मुझे लगता है तौबा एक डिटर्जेंट है या एसिड है। आप इमेजिन करें ना, कुछ कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है, सिंक में चीज़ें ब्लॉक हो गई या टॉयलेट में कुछ चीज़ें फंस गई, पेपर्स हैं कुछ हैं, तो क्या कहते हैं, तेजाब डालो। आज उसको प्लम्बिंग सॉल्यूशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ड्रेनेज के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जूं ही आप एसिड डालते हैं, थोड़ी देर में सब घुल घल के साफ, वो जो रुकावट थी ना वो निकल गई। मुझे ऐसे लगता है कि तौबा हकीकत में एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो हमारे से जो गुनाह हुए होते हैं ना और ब्लॉकेज लगे हुए हैं, गिल्ट होते हैं, उनको सबको बहा के ले जाता है। और अगर वो तौबा करना चाहे तो दिल को दुखी करने की ज़रूरत ही नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस तौबा की तौफीक मिल जाए फिर अल्लाह ताला बंदे के लिए रास्ते खोल देता है। सूरह ज़ुमर आयत 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। पहले तो देखिए अल्लाह कहता है मेरे बंदो, इन आयतों पे भी मैंने इस रमज़ान में बहुत दफ़ा दर्स दी है और साथ इदरीस अफकर साहब की तिलावत चलाई, बहुत खूबसूरत आयतें हैं और उनका पढ़ने का अंदाज़ भी बड़ा प्यारा है। लेकिन अल्लाह ने स्टिल कहा यू आर माई स्लेव्स, इबादी। हम कभी कहें, हम कहते हैं दफ़ा हो जाओ, तुम मेरे आज से बच्चे ही नहीं हो, मुझे शक्ल ना दिखाना, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मेरा बेटा नहीं हो, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह गुनाहगारों को भी अपने बंदे कहता है। बल्कि मुझे कुछ जुमले भी अब याद आ रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि तौबा का ताल्लुक गुनाहों से है, कितने लोग ये कहते हैं, यानी जुमला बोलती हूँ। ये भी एक लेक्चर हुआ रिसेंटली, रिसेंटली सिमरा रमज़ान में ही हुआ था, तो उसमें ये बात थोड़ा मोर क्लियर हुई करके बताई थी, लेकिन आपसे भी अभी पूछती हूँ। हम कहते हैं कि तौबा कौन करे जो गुनाह करता, सच है ना? तो फिर तौबा का अमल, जैसे हर अमल कुछ होता है ना, जैसे ज़कात वो देगा जिसके पास निसाब का माल मौजूद है, तो तौबा वही करेगा ना जो गुनाह करता है। जी, यानी जो बात आप कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि तौबा सिर्फ गुनाहगार नहीं करेगा। अम्बिया कराम ने इतनी तौबा की, वो कौन से गुनाह करते थे? अल्लाह के नबी की दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरम वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता, ठीक है, नबी भी तौबा करते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने कहा मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ, तो लोगों ने कहा कि आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए। तो आपने क्या कहा, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं। अब यहाँ जुमला इस हदीस की रोशनी में समझिएगा, तौबा सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं होती, बल्कि जो नेमतें अल्लाह ने दी है ना उनका हक अदा करने के लिए भी होती है। तौबा नेमतों के शुक्राने के लिए भी होती है। अब वो कैसे, बहुत आसान है। ए अल्लाह, तूने जो नेमत दी थी ना उसका उतना हक नहीं अदा कर सकी, ये भी गुनाह। और कुछ गुनाह नहीं कर रहे फिर क्यों तौबा करें, क्योंकि उस वक़्त कोई नेकी भी तो नहीं कर रहे ना। वॉशरूम में से निकलते क्यों कहते हैं गुफरान का, अल्लाह तेरी तौबा चाहिए, क्यों माफ़ी चाहिए, क्यों कि इस थोड़े से वक्त में नेकी नहीं कर सकी या तेरा जिक्र नहीं कर सकी। नमाज के बाद क्यों कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्यों कि अल्लाह वैसी नमाज अदा नहीं कर सकी जैसी के करने का हक था। ठीक है, तो अब अस्तग़फार और तौबा जो होती है ना, ये बंदे के गुनाहों के साथ ही नहीं होती, नेकियों के साथ है। नेकियां करके अस्तग़फार क्यों करें, इसमें जो हज़ारों गलतियां करते हैं, जो हक तलफी करते हैं, जो कमी बेशी करते हैं, نیکیوں کے کام کرنے والوں کو تو کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا گناہ کرنے والوں کو امید دلائی گئی۔ اور یہ وہ شخص نہیں ہے جس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، بلکہ آپ سٹائل دیکھیے، یغفر الذنوب جمیع، سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، کہیں اسرفو کا لفظ ہے، اور ذنب کہتے ہیں ٹیل کو، دم، جانور کی ٹیل ہوتی ہے نا، ساتھ ہی لگی رہتی ہے اس کے، اسی طرح گناہوں کی دم ہمارے ساتھ لگی ہی رہتی ہے۔ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب، سورۃ مومن کے شروع میں آتا ہے۔ تو گویا کہ کیا پتہ چلا کہ جس نے بھی کوئی گناہ خود کیا یا کوئی دوسرا اس کے پاس آئے تو آپ اس کو امید دلائیں۔ اور اس کا حکم سورۃ الانعام آیت 54 میں اللہ کے نبی کو کہا گیا، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ یہ آیت کریمہ شاعری نے اتنی خوبصورت پڑھی ہوئی ہے نا، کہیں آپ کلپ میں دیکھیں، ٹی وی قرآن ڈاٹ کام پہ جائیں گے، آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے بہت کلپ ملیں گے۔ اس کو پڑھتے ہوئے بھی رونا آ رہا ہوتا ہے کہ جب تیرے پاس وہ لوگ آ جائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دو سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو جہالت سے کوئی برائی کرے گا اور پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کا دل نہ توڑے۔ اب میں اور آپ کیا کریں ان لوگوں کو جو گناہوں میں ابھی تک انڈلج ہیں، ابھی گناہوں کی زندگی پوری چھٹی نہیں لیکن چھوڑنا چاہتے ہیں، گلٹ ہے، آپ ان کو بلائیے۔ اس پہ ایک پورا لیکچر بھی، آج کے دور کے مہاجر اور انصار، کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ اس دور سے گزر چکے ہیں، اب نیکیوں پہ جم گئے ہیں، وہ کون ہیں آج کے دور کے؟ انصار۔ اور جو ابھی سٹل دنیا کی محبتیں اور ایسی چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہیں وہ کون ہے؟ مہاجر۔ پچھلے انصار کا فرض بنتا ہے کہ آنے والے مہاجرین کا ہاتھ پکڑ لیں۔ تو آپ کے خاندانوں میں، آپ کی دوستوں میں، پیاروں میں کوئی ایسا بندہ آپ کو اگر نظر آئے تو اس کو سینے سے لگائیے، کیونکہ شروع میں گلٹ بہت ہوتا ہے اور پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایک گز ٹکڑا سر پہ لے کر سوچتے ہیں ہم نے اتنی بڑی نیکی ماری، اور میں ایسی سسٹر کی شکل اپنے ذہن میں اس وقت بھی سوچ رہی ہوں، وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ حجاب کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ اس وقت بھی جو ان کا حجاب تھا وہ مطلب کوئی پردے والا حجاب نہیں مجھے لگا، اتنا فینسی، اتنا کلری سب، اور نیچے حال حلیہ کپڑے جیسے بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا میرے لیے یہ حجاب بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں نے کہا اللہ آپ کو اس سے بھی آگے لے کر جائے، یہ جرت بڑی ہے نا، کل تک تو آپ یہ چھپاتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے سر پہ کپڑا رکھ کر یہ اب یقین دلا دیا کہ آئیں مسلم، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں، یہ نہ کہیں کہ لو اس کا کیا فائدہ اور یہ اس سے تو بہتر ہے تم ایسے ہی رہو، اور اب پردہ تو ایک فیشن بن گیا اور ایسے بھائیوں سے کیا ضرور فائدہ ہوگا جو آپ برانڈیڈ ہو گئے اور دس ہو گئے۔ مت کہیے، یہ بیچ رستے ہیں تو نو پرابلم ایٹ آل۔ آپ کی چھوٹی بچی حجاب کرتی ہے، آپ اس کو اچھے صاف ستھرے نائس کلر کے ڈیسنٹ حجاب لے دیں تاکہ وہ اپنا شوق بھی پورا کر لے، ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ اس کا دل پھر بالکل سادے پہ آ جائے گا، لیکن اگر آپ ماشاء اللہ سب کرتے کراتے ابھی تک اسی پہ پھنسے ہوئے تو پھر یہ خطرے کی بات ہے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے بچہ گروئنگ ایج میں بڑھے نا تو ماں کو فکر لگتا ہے۔ اسی طرح ہر سال ہر قرآن کے بعد اگر ہم اپنے عمل میں ایک اضافہ نہ دیکھیں، اب ادھر کمی تھی اب یہ، تو پھر فکر کریں۔ فکر تو ہم کریں جو کئی سال سے سن رہے ہیں اور ہمارے اندر چینج کوئی نہیں آ رہی۔ تو جو نئے نئے سن سن کے تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے ہیں تو ان کو تو ہمیشہ امید دلائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ توبہ جس کا نام ہی توبہ ہے، 102 اور 103 آیت میں کیا ہے، واخرونا ترفو بھی زنو بھی ہم خلط و املن صالحن و خرا سیاح، کھچڑی پکی بھی ہے۔ کل بھی میں نے جب درس دیا اس میں یہ آیت کوٹ کی تھی کہ جب ایک صحابی نے قرآن پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے فی ہی ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، جانتے نہیں، سوچ میں پڑ گئے میرا ذکر کدھر ہے، میں کدھر ہوں قرآن میں، جا کے آیتیں دیکھی مومنوں کا ذکر، متقیوں کا ذکر، کہتے میں ایسا تو نہیں ہوں، کفار کی آیتیں پڑھی، کہا میں ویسا بھی نہیں ہوں۔ جب اس آیت پہ پہنچے خلط و عملاً صالحاً وآخر سیئاً، کہ انہوں نے اچھے اور برے عمل سارے ملائے ہوئے ہیں، کہتے بس پا لیا پا لیا، یہ آیت میرے بارے میں۔ تو آج انسانیت کی اکثریت جو ہے وہ انہی کاموں پہ، تو اس طرح کی چیزیں پڑھ پڑھا کر سن کر کیا یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اللہ ہوئیں یہ توبہ علیہ میں، شاید اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، نہیں، یہاں اسا کا لفظ جو ہے یہ شک نہیں ہے، یقین کے معنوں میں، یعنی ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت آتی ہے تو وہ اپنے ایکسٹریم پہ آتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایسا مے بھی، تو مے بھی میں مے تو ہوتا ہی ہے نا کہ ہو جائے گا، تو اللہ کا مے بھی کنفرم ہے، اس کے اندر یہ حقیقت ہے۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جان کے ضرور کریں گے۔ फिर इसी तरह से आप देखते हैं हज़रत अनस की रिवायत है, हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इब्ने आदम तूने जब भी मुझसे दुआ की और मुझसे लो लगा कर उम्मीद बांधी तो मैंने तुझे बख्श दिया, तेरे अमल से सरफे नज़र करते हुए मैंने इसकी ज़रा बराबर परवाह न की। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की चोटी को छूने लगें और तू मुझसे तौबा इस्तग़फ़ार कर ले तो मैं तेरी खातिर इसे भी बख्श दूंगा, इसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं करता। ए इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन के हुजम के बराबर गुनाहों का पलंदा ला कर मुझसे मिले, बशर्ते कि तूने मेरे साथ शिर्क ना किया हो, तो मैं भी तुझसे इसी कदर मगफरत और बख्शिश लेकर मिलूंगा। है ना सोने के पानी से लिखने वाली हदीसें, कितना इंसान को ऊपर लेके चलती हैं और अपलिफ्टिंग होती हैं, और इंसान फिर ऐसे मामलात में आगे से आगे जाता है। तो लिहाजा उम्मीद और रजा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है।